ஞானவீரோ மங்களம் கௌதமோகணி மங்களம் குந்து குந்தாத்யோ ஜெயின தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயினம் ஜெயது சாஸ்திரம் மோக்ஷ மார்கஸ்ய நேதாரம் வேத்தாரம் கர்ம பூவ்ரதாம் ஜ்ஞாதாரம் விஸ்வ தத்வானாம் வந்தே தத்குணலப்தயே. பகவான் மகாவீர் சுவாமி கி, உமா சுவாமி மகாராஜ் கி, ஆச்சாரிய குரு வித்யாசாகர் முனி மகாராஜ் கி கா பிரூபம் கர்னே வாலா தீசரா அத்தியாய் ஆஜ் அப்பன் படத்தே ஹே. இஸ்மே மத் லோக கா வர்ணன் கியா கயா. சாமான்யதா ஜெயன் தர்ஷன் மே லோக கி தீன் பாக் கரே ஹே, ஊர்த்வலோக் மத்யலோக் ஔர் அதோலோக். ஜிஸ்மே ஊர்த்வலோக் மே தோ தேவ பர்யாய கோ தாரண் கர்னே வாலே சார் பிரகார் கே யா சார் நிகாய கே தேவ உத்பன்ன ஹோதே ஹேன். மத்யலோக் மே மனுஷ்ய ஔர் திரியஞ்சோ கா நிவாஸ் ஹே ஔர் அதோலோக் மே நார் கி ஜீவோ கே ஆவாஸ் ஹே யா உன்கே ஆவாஸ் கோ பில் கேதே ஹே. இஸ் தரஹ தீன் பாகோ மே ஜோ லோக் விபாஜித் ஹே உஸ்மே ஸே அபன் மத்ய லோக் கே பாரே மே ஜிஸ்மே அசங்க்யாத் தீப் சமுத்ர ஹே உஸ்கி சர்ச்சா கர்தே ஹே. வைசே யே ஜியோகிராஃபி ஔர் கோஸ்மாலஜி கா விஷய ஹே. வர்த்தமான மே ஜோ ஜியோகிராஃபி ஔர் கோஸ்மாலஜி விகசித் ஹுயி ஹே வஹ பிரயோகசாலா மே விபின்ன யந்த்ரோ கே மாத்யம் ஸே விகசித் கீ கயி ஹே ஔர் பஹுத் குச் தோ பரிகல்பனாவோ பர் ஆதாரித் ஹே ஜோ கி உத்தர் தேதே ஹே லேகின் சமாதான் நஹி தேதே. ஜெயன் தர்ஷன் மே ஜெயன் முனிஷியோ நே ஆச்சாரி பகவந்தோ நே சர்வக் பகவான் கே த்வாரா சூக்ஷ்ம திருஷ்டி ஸே யா கேவல் ஞான் ஸே ஜோ ஜானா ஹே உஸ்கா பிரூபன் கியா ஹே. சஹசா உஸ் பர் விஸ்வாஸ் தோ நஹி ஹோதா லேகின் ஜிஸ்கே பீதர் ஏக் பார் சச்சி ஸ்ரத்தா ஜாக்ரத் ஹோ ஜாதி ஹே உஸ்கே மன் மே விசார் ஆதா ஹே கி தேகோ மே கித்னா அஜ்ஞானி ஹூன் ஜோ இன் சப் பாத்தோ கோ சமஜ் நீ பா ரஹா ஔர் கோயி ஹே ஜோ இன் சப் பாத்தோ கோ பிரத்யக்ஷ தேக்தா ஜான்தா ஹே அத்புத் ஹே ஐசா கேவல் ஞான் ஔர் ஜிஸ்கே அந்தர் ஸ்ரத்தா நீ ஹே வோ தோ கஹேகா கி தீசரா ஔர் சௌதா அத்யாய தஸ் அத்யாயோ மே ஸே பட் கயி லாயக் நஹீ ஹே கோர்ஸ் மே நஹி ரக்கோ வே தோ சப் ஆவுட் ஆஃப் டேட் ஹோ கயே பஹுத் புரானே ஜமானே கி பாத்தே லிகி கயி ஹே. ஐசா அப்னே மன் மே விசார் ஆ ஜாயேகா லேகின் விசார் தோ ஆனா சாஹியே கி தேகோ மேரா கைசா ஸ்வரூப் சமிக் ஞான் ஹே ஜோ கேவல் ஞான் கி அபேக்ஷா ஸே அஜ்ஞான் ஹீ ஹே. சூக்ஷ்மம் ஜினோதிதம் தத்வம் ஹேதுர் நைவ ஹன்யதே ஆஜ்ஞா சித்தம் தத்க்ராஹ்யம் நான்யதா வாதினோ ஜின. அரே ஜினேந்திர பகவான் ஜினோனே ஹமாரே ஆத்மா கே கல்யாண கே லியே பிரயோஜனபூத் சாத் தத்வோ கா ஜேசா ஹே த்யோ கா ஜ்யோ கா த்யோ வர்ணன் கியா ஹே வே இன் சீஜோ மே கலதி கேசே கர் சக்தே ஹே ஹமாரே ஜூட்டா பிரூபன் கேசே பதா சக்தே ஹே பஹுத் சூக்ஷ்ம ஹே ஜினேந்திர பகவான் கே த்வாரா கயா தத் கஹா கயா தத் மேரே லியே தோ உன்கி ஆக்யா ஹீ சிரோதாரி ஹே ஐசா மான் கர்கே और तीसरा चौथा अध्याय में जो जीव तत्व के बारे में वर्णन किया है सो उसे स्वीकार करना चाहिए। जब अपने को केवल ज्ञान होगा सो ये सब बातें अपने ज्ञान में प्रतिभासित होंगी, ऐसा विचार करके ही पढ़ना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने जो अधोलोक कहा है उस अधोलोक की भी संक्षिप्त जानकारी इस अध्याय में सात सूत्रों में दे दी और उसके उपरांत मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों की और मनुष्य लोक की बात कही है। सो अपन पहले नरक के बारे में या अधोलोक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रत्न शर्कला वालुका पंक धूम महो तमो महात्मा प्रभा भूमियों घनामुवाता का प्रतिष्ठा सप्ताधूधा। सात प्रकार की अधोलोक में पृथ्वियां हैं, भिन्न भिन्न वर्णों वाली, उन्हें ही हम अज्ञानतावश नरक कह देते हैं जबकि वे नरक की भूमियां हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्व लोक में देवों के रहने के विमान हैं सो अपन उनको ही देव कहते हैं, हैं? इस प्रकार अपने को ज्ञान नहीं होने की वजह से कह देते हैं। पराचारी भगवंत लिख रहे हैं कि देखो ये जो सात पृथ्वियां हैं उनके अंदर बिल बना करके बने हुए हैं बिल, सो उनमें ही नारकी जीव निवास करते हैं। उनकी आभा कैसी कैसी है? रत्न प्रभा, जैसे रत्नों की आभा होती है वैसी ही आभा वाली पहली पृथ्वी है। शर्करा प्रभा, शक्कर के जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ठीक उनके समान आभा वाली दूसरी पृथ्वी है। वायु का प्रभा, जो अपन रेत और सैंड जो उपयोग करते हैं अपने देखने में आती है उसकी जो आभा है वैसी ही आभा तीसरी पृथ्वी की है। जो पंक भाग अपने देखने में आता है मेला क्षेत्र, उसमें जिस प्रकार की आभा होती है कीचड़ के क्षेत्र की वैसी ही आभा वाला है। उते कीचड़ मचो है जानी सूचना, उसके समान आभा वाली पृथ्वी है। और जैसे धुएं का रंग होता है इसी प्रकार धूम प्रभा और अंधकार के समान आभा वाली तमा प्रभा और घोर सघन अंधकार के समान महातमा प्रभा, ये सात भूमियां हैं जो नीचे नीचे स्थित हैं। लेकिन जैसे अपनी अलमारी में ड्रायर बनाते हैं सात ठो बना दो सो ऐसी स्थित नहीं है पृथ्वियां, एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में वायुमंडल है, ये हम ध्यान रखना। इसमें तीन प्रकार की वायुएं या वायु के वलय वहां पर प्राप्त होते हैं। घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, एक एक भूमि एक एक पृथ्वी वात वलय पर स्थिर है, उसके उपरांत दूसरी पृथ्वी है, ऐसा मंजिल बनी है सात, इस तरह का हिसाब नहीं है। उनमें एक दूसरे के बीच में और वायुमंडल है, वायु का स्थान है। तीन तरह के वात वलय की कल्पना की गई है, एक तो बहुत तनु अर्थात बहुत विरल वायु का मंडल होता है जिसे तनु वात वलय कहते हैं, और एक घन वात वलय है जहां की बहुत कॉम्पैक्ट बहुत सघन वायु पाई जाती है उसे अपन घन वात वलय कहते हैं। और ऐसा भी क्षेत्र है वायु का जहां की वात वलय में वायु के साथ साथ जल की मात्रा भी मिश्रित है, सो ऐसे को अपन घन और अंबु सघन वायु जल मिश्रित, तो तीसरे वात वलय को घनांग वात वलय ऐसा नाम दिया गया है। इन तीनों वात वलयों पर ये एक एक पृथ्वी आधारित है। ऐसी सात पृथ्वियां नीचे नीचे अधोलोक में स्थित हैं। इन सातों पृथ्वियों में नारकी जीवों के बिलों की संख्या बहुत है, लाखों में है। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंच दश दश त्रि पंचो नैक नरक सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। क्रम क्रम से इन पृथ्वियों में 30 लाख, पहली पृथ्वी में तो नारकी जीवों के रहने के लिए बिल बने हैं 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, पांच पांच कम बढ़ जाओ, फिर उसके बाद 15 लाख, और चौथी पृथ्वी में 10 लाख, फिर 3 लाख में 5 कम, क्योंकि 3 लाख में नहीं 3 लाख, हाँ सॉरी 5 कम 1 लाख, वो रहेंगे छठे में, और वो जो 5 बचे वो 7वें में, यानी सबसे कम कहां पर बिल है, 5 ही है 7वीं पृथ्वी में। वहां पर जाने वाले बहुत कम जीव हैं, उतने ही में रह जाते हैं, ऐसा अपन मान करके चले। 7वें नरक में तो वज्रवृषभ नाराज सहनन को धारण करने वाले और घोर पापकारी में लिप्त जीव ही उत्पन्न होते हैं, बहुत कम जीव इस तरह से 7वां नरक प्राप्त करते हैं, 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी जीवों के किस प्रकार की वेदना होती है, सो कहते नित्य ही अशुभतर लेश्या होती है। अशुभतर क्यों कहा, अशुभ ही क्यों नहीं कह दिया, तो त्रियंचों की अपेक्षा भी जिनकी लेश्या खोटी होती है, इसलिए अशुभतर कंपेयर किया है। एक तो अशुभ ही होती है, लेकिन उसमें भी त्रियंचों की अपेक्षा देखा जाए तो नार की जीवों की लेश्या, उनकी भावदशा त्रियंचों से भी अशुभ होती है, तो उसे अशुभतर ऐसा कह दिया। द्रव्य लेश्या तो जैसे जीव उत्पन्न होते हैं सो जीवन पर्यंत बनी रहती है, लेकिन भाव लेश्या में अंतर्मुहूर्त के बाद परिवर्तन आता रहता है, सो भाव लेश्या के अंतर्मुहूर्त के बाद आने वाले परिवर्तन को ऐसा नहीं समझना कि एक लेश्या से दूसरी बदल गई, उसी लेश्या के परिणामों में तरतमता होती रहती है। कृष्ण लेश्या है तो कृष्ण लेश्या में ही परिणामों में तरतमता अंतर अंतर मुहूर्त के बाद होती चली जाएगी, पर लेश्या तो कृष्ण ही रहेगी। देव और नारकियों के लिए इसी प्रकार का नियम है। देखो पहली और दूसरी पृथ्वी में तो होगी कापूत लेश्या, तीसरी पृथ्वी के ऊपरी भाग तक तो कापूत लेश्या होगी, लेकिन नीचे भाग से नील लेश्या शुरू हो जाएगी। पांचवी पृथ्वी के जो कि ऊपरी भाग तक चलेगी और नीचे के भाग से कृष्ण लेश्या शुरू हो जाती है। छठवें और सातवीं पृथ्वी में भी कृष्ण लेश्या होती, कहीं कहीं पर आचार्य भगवान सातवीं पृथ्वी में परम कृष्ण लेश्या अत्यंत प्रगाढ़ परिणाम कृष्ण लेश्या के भी ऐसा उल्लेख करते हैं। परिणाम भी उनके खोटे होते हैं। परिणाम का अर्थ यहां पर भाव नहीं लेना, अर्थात रूप रस गंध स्पर्श ये चारों का परिणाम अत्यंत दुखदायी होता है, अशुभ ही होता है, और उनकी देह जैसे जैसे नीचे के नरक में पहुंचते जाते हैं देह की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। सो ऊंची देह उनके लिए कष्टप्रद होती चली जाती है, और देह भी अपार रोगों से ग्रसित, भले ही वैक्रिय शरीर है लेकिन देह में भी बहुत से रोग होते हैं और दुर्गंध युक्त होती है, ऐसी देह नारकी जीवों की पाई जाती है। वेदना तो उनके लिए बहुत प्रकार की वेदना है, शारीरिक वेदना तो है ही, मानसिक रूप से भी वे पीड़ित किए जाते हैं अवधि ज्ञान लगा करके। और दूसरे अशुभ जाति के देव देव हैं, उनके द्वारा भी उनके अंदर दुख उत्पन्न किए जाते, आकस्मिक दुख भी उनको आते हैं, और भूमि या कि क्षेत्रगत भी उनको पीड़ा भोगनी पड़ती है। इस प्रकार से वेदना भी बहुत है, विक्रिया उनकी अशुभतर ही होती है। अच्छा करना सोचेंगे लेकिन उनके द्वारा बुरा ही हो जाएगा, खोटी विक्रिया ही करेंगे, खोटे रूप ही धारण करेंगे। जो दिखने में सुंदर रूप है वह तो उनके भीतर भाव आएगा, लेकिन जब उनकी विक्रिया करेंगे, अपनी अपने रूप को बनाएंगे, तब तो वो सब दूसरे के लिए डरावना और विवत्स ही मालूम पड़ेगा। पृथक विक्रिया तो नार की जीव कर नहीं सकते, अपृथक विक्रिया होती है, अपने शरीर को ही जो चाहे सो बना लो, लेकिन अपने शरीर से भिन्न किसी और चीज की विक्रिया कर सकें ऐसा उनके लिए योग्यता नहीं है, क्षमता ही नहीं है। देखो अपन पढ़ते हैं कि सेमर दल है तरुजुत नहीं वो सेमर तरु दल युत, तो सेमर के वृक्ष की कल्पना करी है नरक में, तो दो मान्यताएं हैं उसमें भी। सेमर के वृक्ष बाई नेचर वहां पर पाए जाते हैं, जिनके की पत्ते शस्त्र के समान आघात करते नार की जीवों पर, एक तो मान्यता ये है। और दूसरी मान्यता ये है कि सेमल का वृक्ष नहीं है, वो तो नार की जीव ही अपना रूप बना करके बैठा है, और जब वहां कोई नार की जीव विश्राम पाने आता है तो उसके ऊपर वार कर देता है तलवार के समान तीक्ष्ण। ऐसे दो प्रकार से वर्णन आते हैं, तो अपन को समझना चाहिए कि उनकी विक्रिया अशुभ ही होती है। परस्परो देवे दुखा, भैया अपन आपस में कोई एक दूसरे को लड़वाए तो क्या कहते कि बड़ी नार की प्रवृत्ति है, खुद भी लड़ रहे और दूसरे को भी लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे, सो एक दूसरे के लिए उदीरित करते हैं। कोई शांत बैठे हो तो उसे लड़ने के लिए प्रेरित करने के उपाय करेंगे, तुमने कछु नहीं कही थी तो तुम्हारी ऐसी कह रहे थे लड़ो तुम, ऐसा। यहां पर भी अपन देखते हैं संसार में कुछ लोग इसी में संतुष्ट रहते हैं, अपने आप दूसरे को लड़वा करके ही मजा लेते रहते, जिसको अपन हिंसानंद नाम का रोद्र ध्यान कहते हैं। ऐसे हिंसा के लड़ाई के कार्यों में भी अपन हर्ष मानते रहते हैं, ऐसा रौद्र ध्यान यहां भी होता। उसी रौद्र ध्यान के परिणाम स्वरूप तो नरक में जाते हैं। सुना की जीव भी एक दूसरे को अपने अवधि ज्ञान से दूसरे को बता करके और लड़वा देते हैं, वहां पर अरति ज्यादा है रति कम है। एक दूसरे के गुणों की चर्चा करके एक दूसरे के प्रति अनुराग और प्रेम उत्पन्न करना बहुत कठिन है, लेकिन एक दूसरे की चुगली करके एक दूसरे की निंदा करके दूसरे के मन में दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न कर देना, देश का भाव उत्पन्न कर देना, ये सब की प्रवृत्ति रहती। यहाँ तो मनुष्यों में तो ये प्रवृत्ति थोड़ी से लोगों की पाई जाती, लेकिन नरक में तो सब जीवों की ऐसी ही प्रवृत्ति होती कि देश भाव स्वयं रखते हैं और दूसरे को भी लड़वाने के लिए देश भाव उत्पन्न कर देते हैं। तो परस्पर एक दूसरे के लिए भी लड़ने के लिए हिंसा के लिए तैयार करते हैं और फिर दुख देते हैं और दुख भी पाते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीर दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, तीसरे नरक तक, तीसरे नरक की पृथ्वी कहो अपन, वो शब्द प्रचलित हो गया, सो सात नरक ही कहने की आदत अपन की बनी हुई है, क्या करें संस्कार है। लेकिन तीसरी पृथ्वी तक जो नार की जीव है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को संक्लेशित करते हैं और पीड़ा देते हैं। जो संक्लिष्ट असुर जाति के देव हैं वे सब एक दूसरे को आपस में लड़वा करके और दुख उत्पन्न करते हैं। सो ऐसा एक दूसरे से बताए जाने पर दुख भी वहां पर उत्पन्न होता है। अंबा वरिष्ठ जाति के संक्लिष्ट अत्यंत संक्लेश परिणाम वाले देव होते हैं, वो इसी में माहिर रहते हैं, वो एक दूसरे को रवाते रहते। जैसे अपने यहां पर अपन पढ़ते हैं नारद के बारे में वर्णन कि उनको चुगली करवी में लड़वा भी न जाओ, फिर खड़े खड़े देखते रहे हैं और फिर ज्यादा होने लगी लड़ाई, सो धीरे से बता दें कि तुम्हारे भी आएंगे बेकार में लड़ रहे तुम, सो दो जनों की मित्रता करवा देंगे, लेकिन पहले लड़वा करके मजा लेगी। उस नरक में सब नरकों की जो नार की जीवों की आयु है वो कितनी कितनी है, तेश वे त्री सप्त दस द्वा विंशति त्रयस्त्रिंशत सागरूप मां सत्वानाम परा स्थिति। उन नरक की पृथ्वियों में नार की जीवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो एक सागर पहले नरक में, तीन सागर दूसरे में, सात सागर तीसरे में और दस सागर चौथी पृथ्वी में, पांचवे में 17 और 22 और अंतिम सातवीं पृथ्वी में जो नार की जीव हैं उनकी आयु 33 सागर की होती है। इतने समय तक वहां पर वो दुखों को ही झेलते रहते हैं, दुख से घबरा करके वहां से बचना चाहें, निकलना चाहें, अपना घात करना चाहें, सो ये सब चीजें उनके लिए संभव नहीं है। नार की जीव अपघात नहीं कर सकते, अकाल में ही उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, सहना पड़ेगा, 33 सागर की आयु है तो तब तक दुख ही सहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उन नरकों में भी ऐसी अशुभतर लेशा के बावजूद भी कोई व्यक्ति सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख करके सात तत्वों का चिंतन कर सकता है, तमाम लड़ाई झड़ाई के बीच में भी विचार करो, वहां पर भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती अत्यंत वेदना से, जाति स्मरण से, और तीसरे पृथ्वी तक तो जो देव लोग आकर के धर्म श्रवण कराते हैं उससे भी कर्मों का क्षय शोपम उपशम होने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नार की जीवों को हो जाती है। भैया इस तरह से इन छह सूत्रों में मैंने सात कह दिया था भूल से, कल भी हमने ऐसी एक गलती कर दी थी। पहले एक इंद्री जीव से लेकर के हमने कहा था कि असंगी पंचेंद्री तक सब जीव सम्मूर्षण और नपुंसक वेदी ही होते हैं। सो भैया जी हमारी गलती थी, उसको आप सुधार लो। एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री जीव तक तो सब सम्मूर्षण होते हैं और नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, लेकिन पंचेंद्री जीव संगी और असंगी दो प्रकार के और सम्मूर्षण और गर्भजन वाले दोनों प्रकार के हो सकते हैं, उनके तीनों वेद संभव हैं। अकेले नपुंसक वेद भी ही हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो पंचेंद्री जीव सम्मूर्षण जन्म से उत्पन्न हुए हैं उनके नपुंसक वेद बनेगा, लेकिन जो गर्भ जन्म से उत्पन्न हुए हैं उनके तो कोई भी तीनों में से एक वेद रह सकता है। ऐसी चर्चा कल आई थी, इसमें छह सूत्र ये भी हमारी भूल से हमने साथ कह दिए। इस तरह अधोलोक का वर्णन पूरा हुआ। मध्य लोक के बारे में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जम्बू द्वीप लग्नु दाद्या शुभ नामानु द्वीप समुद्रा। मध्य लोक में तो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं अच्छे अच्छे नामों वाले, जैसे जम्बू द्वीप पहला द्वीप है, ये द्वीप का नाम है, और लवण समुद्र ये पहले समुद्र का नाम है। इस प्रकार शुभ नाम वाले अच्छे नाम वाले असंख्यात दीप समुद्र हैं जब मध्य लोक में दुर्धा दुर्दुर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपनो वले आकृता कृतया प्रत्येक जो दीप है उससे दूने दूने विस्तार वाला और दीप को समुद्र घेरे हुए है। जैसे कि अपन बाजार से बाल्टी सेट खरीदते हैं सो एक बड़ी बाल्टी के भीतर छोटियों के भीतर और छोटी और छोटी फिर सबसे छोटी ऐसा चूड़ी के आकार का रचना जैसे कि बन जाती है बाल्टी सेट में ठीक इसी तरह से एक दीप उसके चारों तरफ दूसरा समुद्र फिर उसको घेर करके दीप फिर समुद्र इस तरह से असंख्यात दीप समुद्र एक राजू मध्यलोक के विस्तार में फैले हुए हैं चूड़ी के आकार के हैं। तन मध्य मेरु नाविर्वृत्तो योजन सहस्र सत सहस्र विस्कंभो जम्बू दीपा उन सब दीप समुद्रों के बीच में जैसे कि अपने शरीर में मध्य में नाभि मानी जाती है ऐसे ही मध्य लोक के नाभि के समान स्थान पर मेरु पर्वत है जिसे अपन सुदर्शन मेरु भी कहते हैं। बहुत प्रकार के नाम उसके हैं पांच तो हैं ही सुमेरु सुदर्शन मेरु मेरु इस प्रकार से उनके और भी नाम आते हैं। भैया हमें तीन याद हैं। थाली के समान कैसा होता है दीप गोल होता है और कितने लाख योजन विस्तार वाला है पहला दीप जम्बू दीप तो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। इस सूत्र से अपन ये बात जान लेते हैं। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ईरावत वर्षा क्षेत्राणी अब जो जम्बू दीप है उसमें विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें भरत क्षेत्र हेमवत क्षेत्र हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत और ऐरावत ऐसे क्षेत्र विभाजित किए गए हैं। इन 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले 6 पर्वत भी हैं तभी तो विभाजित होगा। तो तद विभाजिना पूर्वा परायता हिमवन मा हिमवन निषद नील रुक्मी शिखर नो वर्षधर पर्वता इन सब क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वत पाए जाते हैं। उनके नाम भी दिए हैं कि पहले हिमवान पर्वत फिर उसके बाद मा हिमवान पर्वत तीसरे नंबर पर निषद और चौथे नील फिर रुक्मी शिखर नो इस प्रकार से ये 6 हो गए पर्वत और 6 पर्वत से कितने क्षेत्र बन गए 7 बन गए पूरे जम्बू द्वीप में। इस तरह से व्यवस्था है। उनका रंग कैसा है जो पर्वत है तो हेमार्जुन तपूनीय वैडूर रजत हेममया उन पर्वतों का रंग जैसे अपने यहां पर बड़े अट्रेंडम ढेर मिट्टी पत्थर इत्यादि के लग जाने पर अपन उसे पर्वत कह देते हैं सो ऐसे पर्वत की तो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते कि जिनके वर्ण इतने सुंदर होंगे वहां ये सब चीजें पाई जाती हों ऐसा नहीं लेना। उनके वर्ण हैं जैसे कि सोने का वर्ण होता है इस वर्ण वाले पर्वत हैं और चांदी के समान और तपाए हुए सोने के समान वैडूरी नीले रंग की एक मणि होती है तो वैडूरी के समान और पुनः फिर चांदी और स्वर्ण के समान इस प्रकार से इन 6 कुलाचल पर्वतों का वर्ण है या कि उनका रंग पाया जाता है। मणि विचित्र पार्शा उपरि मूले चतुल्य विस्तारा इन पर्वतों का विस्तार कैसा है विभिन्न प्रकार की चित्र विचित्र मणियों से खचित ऊपर मूल भाग में और नीचे समान विस्तार वाले ही ये पर्वत पाए जाते हैं। अब इनको और हम डिटेल नहीं कर रहे कि कैसे पाए जाते हैं भैया हैं। पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरी पुंडरीका रदास्तेषाम उपरी इन पर्वतों के ऊपर एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर है। तालाब बना हुआ है, उनके नाम भी दिए हुए हैं कि पद्म नाम का तालाब मां पद्म नाम का तालाब, तिगिंच केशरिन मां पुंडरीक और पुंडरीक, ऐसे छह पर्वतों पर छह तालाबों के नाम आचार्य भगवान बताते हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्द विष्कंभो हृदा, और ऐसा नहीं है कि हमने तालाब बता दिए तो उनकी हमें लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम, हमने ऐसे कह दे कि हैं उतने तालाब, नहीं, हमें सारी जानकारी है उसकी, कितने बड़े इतने गहरे इतने चौड़े तालाब है, फर्जी हमने नहीं बोला है। तो बताते हैं कि पहला सरोवर कितना लंबा चौड़ा है, 1000 योजन तो लंबा है और उसका आधा यानी 500 योजन उसकी चौड़ाई है, लंबाई से आधी चौड़ाई है। तो प्रथम योजन सहस्रायामस्तदर्द विष्कंभो हृदा, उनकी लंबाई और चौड़ाई इस सूत्र से तालाबों की जानी जाती, लेकिन गहराई कितनी है, 10 योजनाव गाहा, वो पहला जो तालाब है वो 10 योजन गहरा है। एक योजन छोटा वाला तो 4 कोश का होता है, और वैसे तो 2000 कोश का एक योजन माना गया है। द्वीप समुद्रों को बड़े योजन से ही नापने का विधान, कृत्रिम है पृथ्वी कायक है, उनकी आकृति कमल के समान है, लेकिन है तो वो पृथ्वी कायक वनस्पति कायक नहीं है, उनका विस्तार एक योजन है। और तद द्विगुण द्विगुणा सदा पुष्कराणी चा, आगे आगे के जितने सरोवर हैं, हमने तो पहले वाले तालाब के बारे में आपको जानकारी दे दी कि 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है और 10 योजन गहरा है, और उसमें एक ठो कमल है एक योजन विस्तार वाला। अब इसको मान करके आप दूना दूना कर लेना, और इस प्रकार से आगे आगे जितने भी तालाब हैं और कमल है उन सबका विस्तार और कमल की संख्या सब दूनी होती चली जाती है। तन्निवासिन्यु दिव्या श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लुपम स्थित सामानिक परिषद का, उन तालाबों में जो स्थित कमल हैं उनके ऊपर देवियां अपने निवास स्थान बना करके वहां रहती हैं, वो किससे संबंधित हैं, तो सब पहले और दूसरे स्वर्ग से संबंधित हैं, सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग से संबंधित देवियां वहां पर पाई जाती हैं, और उनके साथ में सामानिक जाति के और पारिषद जाति के देव वहां पर निवास करते हैं। एक पल की आयु वाली सामान्य को पारिषद जाति के देवों से सहित 6 प्रकार की देवियां श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये उनके नाम हैं, इन कमल के ऊपर निवास इनके बने हैं, वहां ये रहती हैं। अब जाने पूछो तो तेरे विकार तुम विकार विकार मेरे अपने घर रहती अच्छी बन गई। गंगा सिंधु रोहिद्रोता हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा सरित स्पन्न वद्यदा, उन सब जो जम्बूद्वीप की नदियां हैं या जो सॉरी तालाब हैं, उन तालाबों से ये विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती हैं, गंगा सिंधु रोहिद्र रोहितास्य हरित और हरिकांता सीता और सीतोदा नारी और नरकांता, इनके नाम होंगे, और स्वर्ण कूला और रूप कूला ये दो नदियां, रक्ता नदी और रक्तोदा नदी, इस प्रकार से ये सब उन तालाबों से निकली हुई नदियां हैं जिनकी संख्या 14 हो गई। 6 है तो 7 क्षेत्र, लेकिन तालाब तो 6 हैं, उन 6 में से पहले वाले में से 3 निकलेंगे और आखिरी वाले में से 3 और बाकी में से 2 हो गई पूरी 14। अपन हो चल गई करने पूरी, कम देखा है अपन की मिट्टी निकली है कि भगवान ने देखी दयो दयो पूर्वा पूर्व वाह जो पहले पहले की नदियां हैं दो दो, उसमें से गंगा, गंगा और सिंधु में से गंगा नदी पूर्व की तरफ जाती है और दूसरी सिंधु नदी पश्चिम की तरफ, उसमें से निकल करके उसका गमन होता है। इस तरह से गंगा सिंधु में से गंगा, रोहित रोहितास्या में से पहली रोहित नदी पूर्व की तरफ और बाकी दूसरी पश्चिम की तरफ जाएगी। इस प्रकार अपन सब नदियों के बहने का डायरेक्शन क्या होता है ये अपन इस सूत्र के द्वारा जान सकते हैं। शेषास्त परवाह दो सूत्रों से जाना जाएगा। जितनी पहली पहली है उसके बाद की जो नदियां हैं वो सब पश्चिम की तरफ जाती हैं, अर्थात गंगा और सिंधु में से गंगा तो जाएगी पूर्व की तरफ और सिंधु जाएगी पश्चिम की तरफ। इस प्रकार अपन सबके बहने का भान कर सकते हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधु गंगा सिद्वाद्यो नद्या, गंगा और सिंधु नदी की 14,000 उप नदियां हैं या सहायक नदियां हैं जिनको अपन ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। वर्तमान में ये उप नदी या सहायक नदियां पढ़ने में आती हैं कि ये बहुत बड़ी नदी है, इसकी इतनी सारी सहायक नदियां हैं। ऐसे ही यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि गंगा सिंधु आदि नदियों के जो युगल हैं उनसे 14,000 उनकी सहायक नदियां हैं जिनसे कि वो घिरे हुए हैं। सो गंगा सिंधु की 14,000 हैं, रोहित रोहितास्या की दूनी हो जाएंगी तो 28,000, और कहां तक दूनी चली चली जाएंगी, सीता सीतोदा तक 1,12,000, और उसके बाद आदि फिर 56, फिर 28 और फिर 14। इस तरह से विदेह क्षेत्र के उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में, अपन है दक्षिण भाग में और उत्तर भाग में ऐरावत क्षेत्र है, सो वहां पर ठीक वैसी ही व्यवस्था है जैसी कि भरत ऐरावत में, भरत हरि तीन क्षेत्र स्तर रहेंगे, भरत हेमवत हरि और फिर उसके बाद विदेह, और उसके बाद जो क्षेत्र हैं तीन ऐरावत तक, उनमें व्यवस्था जैसी अपने यहां पर है वैसी ही उनमें भी रहेगी। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षड चैकोन विंशति भागा योजनस्य, इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि पूरे जम्बू द्वीप को अपन कितने योजन का कह सकते हैं, तो 526 योजन विस्तार वाला है और साथ में एक योजन के 19वें भाग में से 6 भाग ज्यादा है, यानी 526 सही 6/19 इस तरह से उसका विस्तार जम्बू द्वीप का दिया हुआ है। वो भरत क्षेत्र का विस्तार बता दिया गया है। तब द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, जितने भी विदेह पर्यंत पर्वत हैं और क्षेत्र हैं वो सब भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। एक सूत्र में ये बता दिया उत्तरा दक्षिण तुल्या, जो अपन चर्चा कर रहे थे कि विदेह क्षेत्र के उत्तर के 3 पर्वत और 3 क्षेत्र, विदेह क्षेत्र के दक्षिण में स्थित जो 3 पर्वत और 3 क्षेत्र हैं समान विस्तार वाले ही कहे गए हैं। भरत क्षेत्र का 526 सही 6/19 है, तो हिमवत क्षेत्र हिमवान जो पर्वत है उससे दूना हो जाएगा 225 सही 17/19, और हेमवत जो क्षेत्र है उससे दूना हो जाएगा। इस प्रकार से यानी भरत क्षेत्र के बाद में जो पर्वत है वो दूने विस्तार का और उस पर्वत से दूना हो जाएगा वो क्षेत्र, ऐसा उसमें लगाना चाहिए। भरते रावती और वृद्धि राशोत्सर सम्याभ्याम सर्पिण सर्पणी भ्याम, भरत और ऐरावत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां पर रहने वाले जीवों में परिवर्तन अवश्य होता है, उनकी आयु उत्सेद और ज्ञान इत्यादि जब घटते चले जाएं तो उसे अवसर्पणी कहते हैं, और जब क्रमशः बढ़ते चले जाएं तो उसे उत्सर्पणी कहते हैं। ऐसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र इन दोनों में वृद्धि और हानि के रूप में होता रहता है। तो अपन छह काल तो जानते हैं, ऐसा काल जिसमें कि बहुत सुख है, सुखमा सुखमा काल, सुखमा काल और फिर सुखमा दुखमा काल, दुखमा सुखमा काल, और अपन बैठी हैं दुखमा दुखमा काल में और इसके बाद आएगा अपन बैठी दुखमा काल में और इसके बाद आएगा और दुखमा दुखमा काल। ये अवसर्पणी का क्रम है और उत्सर्पणी में पहले दुखमा दुखमा काल, फिर दुखमा काल, फिर दुखमा सुखमा काल, ऐसे ये तीन तो रहेंगे कर्म भूमि के और फिर उसके बाद जघन्य भूभूमि, मध्यम भूभूमि और उत्तम भूभूमि में सुखमा सुखमा काल आएगा। इस तरह का जैसे कि घड़ी में एक बजे बजते हैं बारह के बाद दो तीन चार पांच छह, तो ऐसा जो सुई है वो नीचे उतरती हुई आती है। ऐसे ही अवसर्पणी काल में भी सब कुछ जो मनुष्य हैं उनकी ऊंचाई, उनका ज्ञान, उनका बल, ये सब धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। और जैसे सुई सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पर फिर ऊपर चढ़ती है और अपना चक्र पूरा करती है, इसी तरह से उत्सर्पणी और सर्पणी के माध्यम से काल भी अपना चक्र पूरा करता है। अपन को ऐसा समझना चाहिए। और भैया उत्सर्पणी और सर्पणी समझ में आवे चाहे नहीं आवे, अपने जीवन में अपन देखें कि 60 साल की जो उनकी आयु है उसके 6 भाग कर लो आयु के 10-10 साल के, सो दिन तो हो गए 6 काल। सो पहले के 10 साल कैसे हैं? कछु चिंता नहीं है, सब पिताजी पे निर्भर है, आराम से सुखमा सुखमा काल व्यतीत कर रहे हैं अपन का। फिर थोड़ी सी उसमें सुख में कमी आ जाती है, 10 से 20 साल तक थोड़ी करियर की चिंता, पढ़ो लिखो ज्यादा नंबर ले आओ, थोड़ा सा टेंशन ना, कमा मेरे बाबे की कछु नहीं है, बस पिताजी का जो कमाई है पैसा है उसी पर अपन ठाट करते हैं, तो ये सुखमा काल है। और फिर बाद में 20 से 30 के बीच में पिताजी की संपत्ति तो मिलेगी लेकिन आप गमाओगे धीरे धीरे और दुख पूर्वक भी जीवन जीना पड़ेगा, सुख और दुख दोनों का मिला जुला एहसास 20 से 30 साल तक, क्योंकि जिम्मेदारियां भी आ रही और पिताजी का पैसा तो है और अगर नहीं है तो और चिंता। सुस्थिर सुख पूर्वक भी बीतता है क्षण लेकिन चिंता में दुख पूर्वक बीतता है, तो सुखमा दुखमा काल है 20 से 30 तक, और 30 से 40 तक तो दुखमा सुखमा काल की कल्पना करो अपन, और 40 साल से 50 साल के बीच में तो अत्यंत दुखी है, पराधीनता है, और 50 से 60 साल के बीच में तो सबको जानते हैं कि अत्यंत दुखमा दुखमा काल है। ऐसा अपना जीवन 60 साल का ऐसे 6 कालों में ऊपर बीतता है और क्या। अगर कोई मैं सावधानी पूर्वक जिए तो उसके साथ में ये चीज बनेगी, सभी के साथ में नहीं घटित करना। अपन तो 6 काल क्या, अपन तो भू भूमि के सुख का अनुभव कर सकते हैं, देवत्व पने का मनुष्य में भी अनुभव कर सकते अगर अपने जीवन को अच्छे शांति और संतोष पूर्वक जिए तो, और नहीं तो फिर तो ये तो नरक भी बन सकता है अपना जीवन, तो उसको अपन जैसा बनाना चाहो कल्पना कर सकते हैं। कहां तक हो गए थे? अच्छा ये फिर इसके बाद त्याभ्यान अपरा भूमि वस्तिता भररोत ऐरावत के सिवाय अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें काल परिवर्तन नहीं होता, वहां पर उत्तम मध्यम और जघन्य ये भू भूमि ही है जो शाश्वत रहती हैं, वहां पर ऐसा काल परिवर्तन नहीं होता। एक द्वित्री पदलोकम स्थित यो हेमवतक हारी वर्षक दैव कुर्वका, हेमवत हरिवर्ष और देवकुरु, यहां विदेह के अंतर्गत जो देवकुरु है और उत्तरकुरु उसमें से देवकुरु, यहां के निवासी जो मनुष्य पेयंच हैं वो सब एक पल्ल दो पल्ल और तीन पल्ल वाले होते हैं, अर्थात एक पल्ल की आयु तो जगन्न की भोग भूमि की है, दो पल्ल की मध्यम भोग भूमि की और तीन पल्ल वाले उत्कृष्ट भोग भूमि का अनुभव करने वाले जीव हैं। तो इस तरह से हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु इनमें उत्तम, मध्यम और जगन्न भोग भूमि है। तथोत्तरा, उत्तर क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य भी हेमवत आदि के मनुष्यों के समान ही आयु वाले हैं, वहां पर भी उत्तम, मध्यम और जगन्न भोग भूमिया शाश्वत बनी हुई है। विदेहेशु संख्ये काला, विदेह क्षेत्र में मनुष्य और तिरंच कितने आयु के होते, कहते संख्यात वर्ष की अधिकतम एक पूर्व कोटि आयु मनुष्य की कर्म भूमि में होती है और भोग भूमि की अपेक्षा से अधिकतम तीन पल्ल की आयु पाई जाती है। भरतस्य विष्कम्भु जम्बू दीपस्य नवतिशत भागा। देखो आचार्य भगवंत गणित के बारे में कैसा ज्ञान रखते थे। पहले तो भरत क्षेत्र का जम्बू द्वीप में कितना विस्तार है ये बता दिया, और फिर अब कह रहे कि जम्बू द्वीप का 190वां भाग है भरत क्षेत्र। इतना बड़ा जम्बू द्वीप है, 1,00,000 योजन विस्तार वाला, उसमें से कितना छोटा सा भरत क्षेत्र है, 1/190वां भाग भरत क्षेत्र का पाया जाता है। और दीर्घात की खंडे, जो धात की खंड है दूसरे नंबर का द्वीप, और उसमें जो पर्वत है सुमेरु है, वो सब रचना जितनी भी है वो जम्बू द्वीप से दूनी दूनी पाई जाती है। पुष्करार देचा, पुष्करधर द्वीप में भी दूनी रचना पाई जाती है, लेकिन उसका जो आधा भाग है वो तो जम्बू द्वीप का दुगना ही है, क्योंकि जम्बू द्वीप का दुगना तो धात की खंड है और धात की खंड से दुगना होना चाहिए, लेकिन अपन ने सिर्फ पुष्करवर द्वीप का आधा भाग लिया है। तो यहां पर पुष्करवर द्वीप का आधा भाग तो जम्बू द्वीप के समान ही रचना वाला बनेगा। तो क्यों लिया भाई? इसलिए लिया क्योंकि प्राण मानुषोत्तरान मनुष्या, क्योंकि पुष्करवर द्वीप के आधे भाग में जो मानुषोत्तर पर्वत विद्यमान है उसके आगे मनुष्य और तिरियंचों का गमन नहीं होता। ऐसे दो द्वीप और आधा द्वीप और दो समुद्र, ऐसे ढाई द्वीप ही मनुष्य लोक कहलाता है। इसमें ही मनुष्य और तिरियंचों का आवागमन होता है। मनुष्य कितने प्रकार के होते? दो प्रकार के। आर्या मलेक्षाश्च, जो गुणवान हैं और गुणवानों के साथ रहते हैं उन्हें आरी कहते हैं, और जिनको धर्म कर्म की समझ नहीं है वो सब म्लेक्ष कहलाते हैं। म्लेक्ष में भी एक तो अंतर्दीपज म्लेक्ष होते हैं और एक कर्म भूमि के म्लेक्ष होते हैं। अंतर्दीपज म्लेक्ष को ही कुभोग भूमि के मनुष्य कह सकते हैं, जो कि नर समुद्र और कालोपदी समुद्र में बनी हुई गुफाओं में जिनका आवास है और निरंतर दुख का ही अनुभव करते रहते हैं। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा कि जो मिथ्यात्म में लीन है, व्रति व्यक्तियों की निंदा करते हैं और जिनका आचरण भ्रष्ट है, ऐसे जीव मर करके कुमानुष में या कि अंतर्दीपज में उत्पन्न होते हैं। अपना सौभाग्य भैया कि अपन आरी खंड में उत्पन्न हुए हैं, हैं? पांच मलेच्छ खंडों में भी उत्पन्न नहीं हुए, भरत क्षेत्र के आरी खंड में अपन अत्यंत पुण्य के द्वारा ही यहां पर अपना जन्म हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। मलेच्छ खंड में पहला ही गुण स्थान रहता है, अंतर्दीपज मलेच्छों के तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक हो सकता है, क्योंकि उनके तो कुभोग भूमि है, वहां पर एक पल्ल की आयु है और गुण स्थान पहले से चौथा तक होता है, लेकिन जो कर्म भूमि के मनुष्य वो मलेच्छ हैं उनके तो पहला ही गुण स्थान होता है, अन्य गुण स्थान उनके अंदर नहीं होते, धर्म की समझ नहीं होती। इस तरह से आर्य और मलेच्छ दो प्रकार के मनुष्यों की चर्चा आचार्य भगवंतों ने की। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमि और नेत्र देव कुरुतर कुरुभ्या। पांच मेरु संबंधी पांच भरत, पांच ऐरावत और दिव कुरु उत्तर कुरु को छोड़ दिया जाए तो पांच विदेह, इस प्रकार से ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमि पाई जाती हैं, जहां की काल परिवर्तन होता रहता है, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो कैसा काल परिवर्तन है, जैसा भरत और रावत क्षेत्र में है वैसा नहीं है। वहां तो जैसे अपने यहां चौथे काल के प्रारंभ से अंतिम समय तक स्थिति बनी रहती है, वैसी विदेह क्षेत्र में सदा काल विद्यमान रहती है। वहां पर 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहेंगे, वहां तीर्थ हमेशा चलता रहता है। अपने यहां पर चौथे काल में ही जब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं तब ही तीर्थ चलता है। स्थिति परावरे तिपल्लोगमांतर मुहूर्ते, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हुई भोग भूमि की अपेक्षा से भैया, 3 पल्ल, और जघन्य स्थिति कितनी है अंतर मुहूर्त। कोई जीव जन्म लेवे लब्धि अपर्याप्त तक मनुष्य बने और अंतर मुहूर्त अपनी आयु पूरी करके मरण को प्राप्त हो सकता, तो जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की है और उत्कृष्ट भोग भूमि की अपेक्षा से 3 पल्ल की, और त्रियज्ञो निजानाम चा त्रियंचों की उत्कृष्ट और जघन आयु भी इसी प्रकार से है। भोग भूमि के जो त्रियंच हैं वो 3 पल्ल आयु वाले होते हैं और जघन आयु उनकी त्रियंचों की भी अंतर्मूर्त होती है। इस प्रकार से अपन को मध्य लोक के बारे में और अधोलोक के बारे में जीव तत्व कैसा वहां पर है विद्यमान, इसकी चर्चा कर दी। तिरंचों में भाव स्थिति और काय स्थिति यह भी जानने योग्य है। सुभैया में याद नहीं रहती, लिखी हुई है, स्वयं वाचन दी तो आपको सुनाई दी है। पृथ्वी काय की भाव स्थिति कितनी है, 32,000 वर्ष तक एक ही उसी पृथ्वी काय भाव में स्थावर जीव रह सकते हैं, और जल काय की 7,000 वर्ष है, अग्नि काय तो 3 दिन रात में अपनी आयु पूरी करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसी वजह से तो अपन ने दाह संस्कार के बाद 3 दिन बाद खारी उठाने का विचार रखा हुआ है। अब की बात अलग है कि कल इतवार है सो आगे उठा लो, कल पंचमी लग रही सो आगे उठा लो, ऐसा अपन करने लगे हैं अपनी सुविधा से। लेकिन अग्नि तो स्वतः ही अपने आप जो प्रज्वलित हुई थी वो अपनी आयु पूरी करके 3 दिन के अंदर शांत हो जाएगी, ऐसा विचार करते हैं कि अपने को अग्नि का जीवों की हिंसा न करनी पड़े। जब अपने आप अग्नि का एक जीव अपनी आयु पूरी करके चले जावे अन्यत्र, तब हम वहां से जो राख इत्यादि है वो उठा करके लाएंगे, तो अग्नि का एक जीवों की आयु 3 दिन रात होती है। वायु का एक जीवों की तो 3,000 वर्ष की है, वनस्पति का एक जीवों की 10,000 वर्ष की है, 2 इंद्री तो 12 वर्ष की उत्कृष्ट आयु वाले हैं, 3 इंद्री 49 दिन रात तक जीवित रहते हैं, उत्कृष्ट आयु उनकी इतनी है, 4 इंद्री की 6 महीना है, 5 इंद्री में जो जलचर जीव है वो पूर्व कोटि आयु वाले हो सकते हैं, जो सरीसृप रेंग करके पानी में चलते हैं वो 9 पूर्वांग उनकी स्थिति हो सकती। सर्प की तो आयु कितनी, 42,000 वर्ष की आयु वाले हो सकते हैं, पक्षी तो जो है 72,000 वर्ष की आयु के, और चतुष्पद जो चौपाया जीव हैं त्रियंच और वो सब वो भूमि में अधिकतम 3 पल्ल की आयु वाले हैं, उतना वो अपनी भाव स्थिति धारण करेंगे। शरीर की अपेक्षा से देखा जाए तो पृथ्वी का एक जीव तो 22,000 वर्ष में अपनी आयु पूरी करके चला गया, दूसरा आकर के उत्पन्न हो गया। सो पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि जो जीव हैं उन सब की काय स्थिति देखी जाए तो असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक में जितने समय हैं उतने समय तक वह पर्वत या अग्नि वो अग्नि जल वायु ये सब विद्यमान रह सकते, उन्हीं में आकर के जीव उत्पन्न हो सकते हैं, वो उनका उत्पत्ति स्थान बन सकता है। वनस्पति का एक में तो अनंत काल प्रमाण है उनकी काय स्थिति, और विकलेंद्री में संख्यात 1,000 वर्ष है, पंचेंद्री में पूर्व कोटि पृथक से अर्थात तीन से नौ पूर्व कोटि से और तीन पल अधिकतम इनकी आयु है और सबकी जघन्य काय स्थिति तो अंतर्मुहूर्त है। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने काय स्थिति और भैरव स्थिति का भी निर्देश किया हुआ है। अपन को ये सब समझ करके अत्यंत श्रद्धा भाव के देखो इतना सूक्ष्म वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया है, अपन की तो अकल में आते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है और उल्टा और ख्याल आता है कि जो गलती लिखो सब, जैसे अपन बहुत परंता हो गए होशियार सूर्य गलती भगाने लगे हैं, ऐसा विचार अपने भीतर आना चाहिए। ये अपने उसके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने भीतर ऐसा विचार क्यों नहीं आता है कि देखो हमारा ज्ञान कितना अल्प है जो हम इन चीजों को ठीक ठीक समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसा करके अपन को इस ज्ञान को भी धारण करना चाहिए श्रद्धा के साथ। आचार्य जी और विद्यासागर मुनि महाराज की हे जिन्होंने विचार मनास वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी है समुद्र व्यजान वेखो बंद विधि बान वेखो सपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो काबू न सताय वेखो भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो ये ही जिन वाणी है जावानी के ध्यान पे सूझे लोकालोक सुवानी मस्तक नमो सदा दे तुंडो हे दिनवानी भारती तो जपो दिन रहन जो तेरा शरणागे सो पावे सुख।